सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत।
हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत के सीजन 5 में। उम्मीद है आपको हमारे एपिसोड सुनने में उतना ही आनंद आ रहा होगा जितना आनंद हमें इन्हें आपके लिए बनाने में आता है। वेद व्यास की महाभारत में आप सुनते हैं गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाभारत कथा। मैं हूँ आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे 13th एपिसोड की। इस एपिसोड में हम सुनेंगे शकुनी के षड्यंत्र के विषय में, लेकिन उससे पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रीकैप। पिछले एपिसोड में दुर्योधन पांडवों की समृद्धि को देखकर ईर्ष्या की आग में जल रहा था। वह किसी भी तरह से पांडवों से उनकी संपत्ति और साम्राज्य छीन लेना चाहता है। उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसके मामा शकुनी ने एक उपाय सोचा है। चलिए जानते हैं कि वह कौन सा उपाय है। शकुनी ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को जुए का खेल प्रिय है, लेकिन वह उसे खेलना नहीं जानता। यदि महाराज युधिष्ठिर को द्युत क्रीड़ा के लिए बुलाया जाए तो वे पीछे नहीं हट सकेंगे। मैं जुआ खेलने में बहुत निपुण हूँ। इस खेल में मेरी समानता करने वाला पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। तीनों लोकों में मेरे जैसा द्युत विद्या का जानकार और कोई नहीं है। दुर्योधन, तुम द्युत क्रीड़ा के लिए युधिष्ठिर को बुलाओ। मैं युधिष्ठिर का राज्य लक्ष्मी सभी को तुम्हारे लिए अवश्य प्राप्त कर लूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दुर्योधन, तुम ये सारी बातें राजा धृतराष्ट्र से कहो। उनकी आज्ञा मिलते ही हम उन पांडवों को यहाँ बुलाएंगे और उनसे उनका सब कुछ छीन लेंगे। अपने मामा की बातें सुनकर दुर्योधन ने कहा, आप ही महाराज से इस विषय पर चर्चा कीजिए, क्योंकि मैं स्वयं उनसे कुछ नहीं कह सकूंगा। दुर्योधन के साथ शकुनी राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का उत्सव देखकर जब लौटा, तब उसने सबसे पहले दुर्योधन के मन की बात जानी और पूरी बातें जानने के बाद वह राजा धृतराष्ट्र के पास गया और इस प्रकार बोला, महाराज, दुर्योधन का रंग फीका पड़ता जा रहा है। वह सफेद और दुर्बल हो गया है। उसकी बड़ी बुरी दशा है महाराज। वह निरंतर चिंता में डूबा रहता है। आप ही उसके मनोभाव को समझ सकते हैं। उसे शत्रुओं की ओर से कोई असहनीय कष्ट प्राप्त हुआ है। आप उससे बात क्यों नहीं करते हैं? दुर्योधन आपका ज्येष्ठ पुत्र है। उसके हृदय में महान शोक व्याप्त है। आप उसका पता क्यों नहीं लगाते महाराज? शकुनी की बात सुनकर चिंतित धृतराष्ट्र दुर्योधन के पास जाकर बोले,
दुर्योधन कुतो मूलम भृशमार्तोसि पुत्रक श्रोतव्यश्चेन्मया सार्थो ब्रूहि मे कुरुनंदन।
बेटा दुर्योधन, तुम क्यों दुखी हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? सुना है तुम बड़े कष्ट में हो। पुत्र, मुझे बताओ, यह शकुनी कहता है कि तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है, तुम सफेद और दुबले हो गए हो, परंतु मैं बहुत सोचने पर भी तुम्हारे शोक का कारण नहीं समझ पा रहा हूँ। पुत्र, इस संपूर्ण महान ऐश्वर्य का भार तुम्हारे ही ऊपर है। तुम्हारे भाई तुम्हारे कहे अनुसार ही कार्य करते हैं। तुम बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ते पहनते हो, बढ़िया खाना खाते हो, अपनी इच्छा अनुसार हर कार्य करते हो, फिर किस दुख से तुम सफेद और दुबले हो गए हो? पुत्र, तुम दीन की भांति क्यों शोक करते हो? तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण सुलभ समस्त राजोचित सुखों के भागी हो, फिर भी तुम्हें कैसी चिंता हो रही है? बेटा, तुम्हारे शोक का कारण क्या है, यह मुझे बताओ। पिता का यह कथन सुनकर क्रोध और ईर्ष्या से भरे हुए दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मैं अच्छा खाता पहनता तो हूँ, परंतु कायरों की भांति मैं समय के परिवर्तन की प्रतीक्षा में रहकर अपने हृदय में भारी ईर्ष्या धारण करता हूँ। जो व्यक्ति शत्रुओं के प्रति अमर्ष रख उन्हें पराजित करके विश्राम लेता है, और अपनी प्रजा को शत्रु से छुड़ाने की इच्छा रखता है वही पुरुष कहलाता है। युधिष्ठिर की वह अत्यंत प्रकाशमान राज्य लक्ष्मी देखकर मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता, वह मेरी कांति को नष्ट करने वाली है। शत्रुओं के बढ़ते और अपने को हीन दशा में जाते देख और युधिष्ठिर की उस लक्ष्मी को देख करके मैं चिंतित हो उठा हूँ पिताजी। यही कारण है कि मेरी कांति फीकी पड़ गई है तथा मैं दीन दुर्बल और सफेद हो गया हूँ। राजा युधिष्ठिर अपने घर में बसने वाले 88,000 सनातकों का भरण पोषण करते हैं। उनमें से प्रत्येक की सेवा के लिए 30-30 दासियां प्रस्तुत रहती हैं। इसके सिवा युधिष्ठिर के महल में 10,000 अन्य ब्राह्मण हर दिन सोने की थालियों में भोजन करते हैं। काम्बोज राज ने काले, नीले और लाल रंग के मृग चर्म के अनेक बहुमूल्य कंबल युधिष्ठिर को भेंट में भेजे थे। सभी राजलोग भेंट लेकर युधिष्ठिर के भवन में एकत्र हुए थे। उस महान यज्ञ में भूपाल गण युधिष्ठिर के लिए भांति भांति के बहुत से रत्न लाए थे। युधिष्ठिर के यज्ञ में धन की जैसी प्राप्ति हुई है वैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी और ना ही सुनी है। पिताजी, शत्रु की वह अनंत धनराशि देखकर मैं चिंतित हो रहा हूँ, मुझे चैन नहीं मिलता। वहाँ कितने ही ब्राह्मण लोग वैश्य सैकड़ों दलों में इकट्ठे होकर 3 खर्ब भेंट लेकर राजा के द्वार पर रोके हुए थे। वे सब लोग सोने के सुंदर कलश और इतना धन लेकर आए थे तो भी वे सभी राज द्वार में प्रवेश नहीं कर पाते थे। वरुण देवता का दिया हुआ और कांस के पात्र में रखा हुआ मधु समुद्र ने युधिष्ठिर के लिए उपहार में भेजा था। वहां एक कलश भी रखा हुआ था जिसे 1,000 स्वर्ण मुद्राओं से बनाया गया था, जिसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। उस पात्र में स्थित समुद्र जल को उत्तम शंख में लेकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का अभिषेक किया था। पिताजी, वह सब देखकर मुझे जड़ सा आ गया है। सभी पांडव जल लाने के लिए पूर्व दक्षिण पश्चिम समुद्र तक तो जाया करते थे, किंतु सुना है कि उत्तर समुद्र के समीप मनुष्य नहीं जा सकता। वहां भी जाकर अर्जुन अपार धन कर के रूप में वसूल लाया है। राजा युधिष्ठिर के पास जो लक्ष्मी है वह देवराज इंद्र, यम, वरुण, यहाँ तक कि यमराज कुबेर के पास भी नहीं होगी। युधिष्ठिर की उस लक्ष्मी को देखकर मेरे हृदय में जलन पैदा हो गई है। मुझे क्षण भर भी शांति नहीं मिलती। पांडवों का ऐश्वर्य यदि मुझे नहीं प्राप्त हुआ तो मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। अब या तो मैं रणभूमि में उपस्थित होकर शत्रुओं की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करूंगा, या शत्रुओं द्वारा मारा जाकर संग्राम में सदा के लिए सो जाऊंगा। वैसे भी ऐसी स्थिति में मेरे जीवन से क्या लाभ? पांडव दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और हमारी उन्नति जैसे रुक गई है। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से दोबारा कहा, दुर्योधन, तुमने युधिष्ठिर के यहाँ जो अनुपम लक्ष्मी देखी है उसकी प्राप्ति का उपाय मुझसे सुनो। तुम जानते हो युधिष्ठिर को जुआ खेलना बहुत प्रिय है, परंतु वे उसे खेलना नहीं जानते हैं। द्युत अथवा युद्ध किसी भी उद्देश्य से यदि उन्हें बुलाया जाए तो वे अवश्य आएंगे। मैं छल करके युधिष्ठिर को निश्चय ही जीत लूंगा और उनकी उस दिव्य समृद्धि को मांग लूंगा। तुम पांडवों को बुलाओ। शकुनी के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने तुरंत ही धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, इसके लिए इन्हें आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र बोले, पुत्र, विदुर मेरे मंत्री हैं जिनके आदेश के अनुसार मैं चलता हूँ। उनसे मिलकर विचार करने के पश्चात मैं यह समझ सकूंगा कि इस कार्य के संबंध में क्या निश्चय किया जाए। विदुर दूरदर्शी हैं, वे धर्म को सामने रखकर दोनों पक्षों के लिए उचित और परम हित की बात सोचकर उसके अनुकूल ही कार्य निश्चय करेंगे। दुर्योधन ने कहा, विदुर जी जब आपसे मिलेंगे तब अवश्य ही आपको इस कार्य को करने से मना कर देंगे। पिताजी, यदि आपने इस कार्य से मुंह मोड़ लिया तो मैं निसंदेह अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरी मृत्यु हो जाने पर आप विदुर के साथ सुख से रहिएगा और सारी पृथ्वी का राज्य भोगिएगा। भला मेरे जीवित रहने से आप क्या प्रयोजन सिद्ध करेंगे? अपने पुत्र के वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन के मत में आ गए और अपने सेवकों से इस प्रकार बोले, जाओ बहुत से शिल्पी लगकर एक परम सुंदर दर्शनीय विशाल सभा भवन का निर्माण करो। दुर्योधन के मन की शांति के लिए ऐसा निश्चय करके राजा धृतराष्ट्र ने विदुर के पास दूत भेजा। विदुर से पूछे बिना उनका कोई भी निश्चय नहीं होता था। इसके दोषों को जानते हुए भी वे पुत्र स्नेह में उसकी ओर आकृष्ट हो गए थे। विदुर कलह के द्वार रूप जुए का अवसर उपस्थित हुआ सुनकर और विनाश को निकट आया हुआ जान धृतराष्ट्र के पास दौड़े दौड़े आए। विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र के पास जाकर उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, राजन मैं आपके इस निश्चय को सही नहीं मानता। राजन आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे जुए के इस खेल में पांडु के पुत्रों में भेदभाव ना हो। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर यदि हम लोगों पर देवताओं की कृपा होगी तो मेरे पुत्रों का पांडु पुत्रों के साथ निसंदेह कलह नहीं होगा। अशुभ हो या शुभकारी हो या अहितकारी, भाइयों में यह द्युत क्रीड़ा प्रारंभ होनी ही चाहिए। जब मैं द्रोणाचार्य पितामह भीष्म और तुम वहां उपस्थित रहोगे तब किस प्रकार अन्याय होगा। तुम शीघ्र ही वेगशाली रथ पर बैठकर अभी इंद्रप्रस्थ को जाओ और युधिष्ठिर को बुला लाओ। विदुर मेरा निश्चय तुम युधिष्ठिर से नहीं बताना, यह बात मैं तुमसे पहले ही कह देता हूं। आखिर अब आगे क्या होगा? क्या विदुर किसी भी तरह से धृतराष्ट्र को मना पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको लौटना होगा हमारे अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है MySutradhar। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मन पसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।